नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और 0 प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू कोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।